सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। लो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतेर हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग इस प्रवचन के सत्र में, जो ग्रंथ कई वर्षों से चल रहा है, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर पर विचार करेंगे। हम लोगों ने अभी तक 193 श्लोकों तक विचार कर लिए थे और 257 श्लोक हैं, तो 57 × 7 कितना हुआ? 64। हमारे पास समय है 18 दिन। प्रयास करूंगा कि इस बार यह ग्रंथ पूरा हो जाए, लेकिन जैसी ईश्वर की इच्छा। ग्रंथ के आरंभ में ही एक चीज बताया गया था कि जीवन में उतारने वाली 3 ही चीजें हैं, वैराग्यम, आत्मबोधो, भक्तिश्च इति त्रयम् गदितम्। 3 ही चीजें हैं जीवन में वैराग्य आवे। इसे बताए, दूध रखना है किसी बर्तन में, तो बर्तन साफ होवे, शुद्ध होवे, फिर उसमें दूध रखेंगे तो दूध खराब नहीं होगा। लेकिन दूध रखने के बाद ऊपर से उसको क्या करना पड़ेगा? ढकना पड़ेगा। यदि ढकोगे नहीं, कहीं उसमें छिपकली गिर गई तो, मक्खी गिर गई तो, उसका पिया हुआ दूध भी नुकसान करेगा। उसी प्रकार से जिस अंतःकरण में ज्ञान रूपी अमृत को रखना है, वह अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि माने हुआ अंतःकरण में जो कलमश हैं, अंतःकरण में जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं को निकालना पड़ेगा। कौन सी वासनाएं हैं? संसार विषयक वासनाएं हैं। उनको कैसे निकालें? तो विषयों में दोष दृष्टि देख करके, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अंतःकरण में जो विषय घुसे हुए हैं, महत्व बुद्धि करके घुसे हैं, भाई जिन विषयों के प्रति हमारी महत्वा नहीं है, जिन विषयों की वैल्यू हमने नहीं अनुभव किए हैं, क्या वे विषय हमारे हृदय में बैठे हैं? नहीं बैठे हैं, ध्यान देना। अच्छा, विषयों की वैल्यू क्यों हमारी हृदय में आया? बार बार सुन सुन करके क्यों आया है? बार बार किसी की प्रशंसा, किसी को देख देख करके उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्वा हमारी बुद्धि में बैठ गई और इतना घर कर गया कि जल्दी निकलने का नाम लेता ही नहीं। एक छोटी सी घटना आप देख लो, 2 खेल हैं, अपना राष्ट्रीय खेल है हॉकी, जानते ना राष्ट्रीय खेल कौन है? हॉकी। हॉकी का कैप्टन कौन है? चलो आपको तो मालूम है, चलो हॉकी का है कि फुटबॉल वाला है, जो भी होगा आपको तो चलो एक व्यक्ति को मालूम है। अब क्रिकेट का कौन है? पचासों बता देंगे, पचासों आदमी बता देंगे, क्रिकेट के एक एक प्लेयर का नाम बता देंगे। कितने लोग हैं? जितने लोग बैठे उतने लोग। लेकिन हॉकी के प्लेयर का नाम कोई बताएगा क्या? क्यों नहीं बता रहे हैं? और भी देखना, हॉकी खेलने वाले गिने चुने 14 देश, 14 में भी 8 ही मान के चलो, यूएई या उनका तो कोई कीमत है ही नहीं। कितने देश हैं पूरे विश्व में? कितने देश हैं? 8 गिन लो पूरा तो 14 हो जाएंगे, बस ज्यादा इससे नहीं हो जाएंगे। क्यों हो रहे हैं बताओ? और हॉकी फुटबॉल खेलने वाले कितने देश हैं? लेकिन बार बार टीवी में उसको देख देख करके कौन सा मैच कब है देखें, इतना 3-3 घंटे हम समय उसमें खर्च करते हैं। क्यों? उसकी उसकी महत्व हमारे भीतर बैठ गई है, इसलिए उसको हम निकालना भी चाहे तो निकल नहीं पा रहे। जबकि गेम ही तो है, वो भी एक खेल है। अब बहुत बड़ा खेल नहीं है, छोटा सा खेल है। महंगाई की दृष्टि से भी देखा जाए, पैसे की दृष्टि से भी, तो टेनिस और कॉस्टली गेम है। टेनिस में और लोगों को फायदा होता है। लेकिन कुल मिलाकर के कि जिस विषय का बार बार श्रवण करोगे, चाहे समाज में चाहे लोगों से, उस विषय की आसक्ति तो पैदा हो ही जाएगी, पक्का जान लेना। चाहे वह विषय तुच्छ से भी तुच्छ होवे तो भी उसकी महत्व हमारी बुद्धि में आ ही जाएगी। फिर इसका वासना, वासना से संस्कार, असंस्कार से बार बार जन्म लेना और देना शुरू हो जाएगा। इसलिए जिसकी महत्व आज तक आपने श्रवण किया है, उस विषय की महत्व हटाना है। कैसे करके? उसमें दोष दृष्टि करके। ध्यान ना, संसार में कोई विषय दोष अगुण वाला है ही नहीं है, क्योंकि संसार का विषय कोई सत्य होवे तो उसमें हम अच्छाई निरूपित करें अथवा उसमें बुराई निरूपित करें। रस्सी पे सर्प जो दिख रहा है, वह सर्प जहरीला है कि जहरीला नहीं है, दोनों कहना झूठा ही नहीं झूठा है। लेकिन वह सर्प जहरीला नहीं है, उस सर्प में मगरी है, ऐसी जो हमने भावनाएं आरोपित कर ली हैं, ऐसी भावनाएं हमने क्या किया है? आरोपित किया ही नहीं किया है बताओ। अरे सर्प मगरी निकाल देता है, उगल देता है, उस मगरी के प्रकाश में अपना वो दाना चुगता है, मतलब कितनी कल्पनाएं। ये तो सत्य का कल्पना है। साइंस वालों से पूछो, जो हम लोग बचपन में एक भावना बनाए थे कि रास्ते में चलते उस मगरी को, सांप को मार दो तो उसके भीतर से मगरी निकाल लो, उस मगरी से जो मांगो वह मगरी पूरी कर देगी, और मगरी अंधेरे में भी रखो तो क्या हो जाएगा? उजाला एकदम हो जाएगा। और टीवी में कभी कभी ऐसा सीन दिखा भी देते हैं तो पक्का संस्कार मजबूत हो जाता है, उस सांप के पास मगरी है। तो उस मगरी की महत्व बुद्धि करके उस सर्प को हमने मारना शुरू किया। लेकिन अब पता चल जाए कि भाई मगरी नहीं है, झूठी है, ध्यान देना, सांप में मगरी है झूठी बात है। लेकिन फिर भी उस झूठी मगरी बुद्धि को हटाने के लिए यह भी बताना पड़ेगा, अरे भाई सांप में जहर भी होता है, वो डस लिया, वो काट लिया तो पक्का जीवन से भी हाथ धो पाओगे। तो जो सर्प को पकड़ने की आसक्ति थी, सर्प से जो खेलने की आसक्ति थी, वह आसक्ति धीरे धीरे समाप्त तो होगी। उसी प्रकार से विषयों में सुख है, विषयों में न सुख है न दुख है, लेकिन बार बार सुखत बुद्धि लोगों के कहने से जो हमारी विषयों के प्रति हो गई है, उस बुद्धि को हटाने के लिए उसमें दुखत्व का आरोपण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दुखत्व का आरोपण करना पड़ेगा, तो सुखत बुद्धि समाप्त हो जाएगी। और सुखत बुद्धि समाप्त होते ही आपका अंतःकरण शांत हो जाएगा। तो अंतःकरण की उस अवस्था का नाम क्या होगा, अंतःकरण कैसा रहेगा, उसका स्वरूप क्या है, तो कहा गया जिहासा। जो विषयों की हमारी दौड़ थी ना, अब वह दौड़ अपने आप समाप्त हो जाएगी, बल्कि वह विषय मिलेगा भी ना तो उस विषय को त्यागने की थोड़ी इच्छा होगी, क्योंकि दोष देखा ना, अभी ज्ञान नहीं हुआ है, अभी मिथ्यात्व निश्चय नहीं हुआ, अभी क्या देखा है, दोष देखा है, तो उस विषय की प्राप्ति में उसको त्यागने की आपके भीतर क्या हो जाएगी, इच्छा होगी। वह वैराग्य का साधन पहला है दोष दृष्टि, स्वरूप है जिहासा। जिहासा माने त्यागने की इच्छा, जिहासा माने क्या हुआ, त्यागने की इच्छा। जैसे कोई चीज पसंद न हो आपके पास आ जाए तो क्या करते हो, तुम बरकरार रहो, जो आदमी आपको पसंद न हो वह आपके घर में आ जाए तो क्या सोचते हो, ये कब जाएगा, कब छुट्टी होगी, एक एक दिन गिनोगे, आज कई तारीख हो गई, आज तो ही पहला दिन है, अभी तो 18 दिन सुना है, तो एक मन में संस्कार जगेगा नहीं जगेगा। और जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो उसको, अरे 18 दिन कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे संसार का कोई विषय भोग मिले तो उसके साथ जीना आपका क्या हो जाए, थोड़ा सा एक इस सांसारिक व्यवहारों से, सांसारिक परिस्थितियों से कब छुटकारा मिलेगा, कब अपने आप में हम बैठेंगे, ऐसी इच्छा होवे। अरे रावण भी तो कहता था कदा शिव भगवान, हे भगवान शिव, ऐसा दिन कब होएगा कि हम सारी दुर्मति को छोड़ करके, सारे प्रपंचों को छोड़ करके, कदा नीलिम्प निर्झरी, हाँ, गंगा जी के किनारे किसी कोटर में गुफा में बैठ करके, हाँ, ये राजा है यह गरीब है, दोनों के प्रति एक भाव रखते हुए, तिनाज बिंद लोचनयो, एक चंद्रमुखी कोई कन्या होए अरविंद लोचन वाली कमल नेत्र, और दूसरा क्या होए घास का तिनका होए, दोनों के प्रति एक बुद्धि करते हुए, दोनों हाथ यूं सर पे जोड़े हुए, शिव 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 का जप करते हुए, कब मैं सुखी होऊंगा। तो रावण जैसे व्यक्ति को भी कितना सोना है रावण के पास, कोई कमी है क्या सोने की, लेकिन उस सोने में रावण को सुख दिखाई नहीं दे रहा है। रावण के पास कितनी कामनियां हैं लेकिन उस कामनी में सुख दिखाई नहीं दे रहा है। रावण यही सोचता है इन प्रपंचों से दूर गंगा जी के किनारे किसी गुफा में बैठा हुआ, दोनों हाथ को जोड़े हुए यूं रखे हुए, शिव 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 का भजन करते हुए, मैं कब सुखी होऊंगा, मैं कब सुखी होऊंगा। ये कौन कह रहा है, तो अंदर भले वह त्याग नहीं कर पा रहा है लेकिन त्यागने की इच्छा तो है, तो इसका नाम क्या है, वैराग्य का स्वरूप है, साधन हो गया स्वरूप हो गया। और इसके बाद वैराग्य का फल है भोगों में दीनता का अभाव हो जाना। क्या होगा, भोगों में दीनता का अभाव हो जाना। अब हम दीन नहीं बनेंगे, प्लीज एक बार एक बार एक टॉफी, जो हम हर विषय भोगों के लिए क्या बन जाते हैं, दीन बन जाते हैं, गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, वह आपके भीतर का गिड़गिड़ाना दीनता समाप्त हो जाएगी, ताकि जीवन वैराग्य आ गया। तो वैराग्य के बाद क्या चाहिए, ज्ञान। वैराग्य के बाद क्या चाहिए, ज्ञान। ज्ञान का साधन क्या है, श्रवण मनन और निधिध्यासन। क्या है, श्रवण मनन और निध्यासन, एक ज्ञान का साधन है। ज्ञान का स्वरूप क्या है, आपको ज्ञान हो गया है अथवा नहीं हुआ है इसकी पहचान क्या है, सत्य मिथ्या विवेचनम, वस्तु को देखते ही इसमें असली नकली की तुरंत पहचान हो जाए। क्या हो जाए, वस्तु को देखते ही, जैसे ही एक हीरे का व्यापारी उसके सामने हीरा रखो तो देखते ही बता देगा असली है ये नकली है। ज्वेलरी सोने को लेता है और देखते ही बता देगा कि इसमें इतना परसेंट सोना है, इतना इसमें मिलावटी है। तो आपको भी संसार को देखते ही ये शरीर देह देही, देखते ही देह देही का अलग अलग तुरंत निश्चय हो जाए कि शरीर मिथ्या है और शरीर के भीतर रहने वाला जो सत्ता है वह क्या है, सत्य है। ये क्या है पहचान, किसकी, ज्ञान हो गया है देखते ही, एकदम देखते ही दो टूक पहचान हो जाए। कहते हैं महाराज जी, मैं सकल देख के पहचान लेता हूँ आदमी कैसा होगा। ये बड़े बड़े जो व्यवहार करने वाले हैं ना, एकदम पहचान लेते हैं। भले वह बड़ी चातुर्यता की मीठी बातें करे, लेकिन कहते हैं महाराज इसकी मीठी बात में मत आना है, बोलता तो है लेकिन अंदर इसके कुछ है। तो देखते ही उसकी ऊपरी स्वरूप में नहीं टिकता। हम लोग तभी क्या करते हैं, उसके नाम रूप में इतने टिक जाते हैं, फंस जाते हैं, उसका असली स्वरूप है। अरे भाई, हम लोग पैकिंग ही तो देखते हैं। मिठाई बाजार में कौन सी खरीदते हैं जिसके ऊपर काफी चमक धमक लगी हो, डिजाइन में कटी हो, और जो सीधी साधी मिठाई हो तो उसको कोई पसंद, भले वो माल असली हो। तो उसी तरह से हम संसार की इन चमक धमक में इतने खो जाते हैं कि गुंग को छोड़ देते हैं। अब गुंग को भी नहीं पकड़ना, गुंग को भी सत्ता देने वाला जो गुंगी है उसको पकड़ना है। जिसके कारण गुंग की सत्ता हो रही है उसको पकड़ना है। लेकिन हम लोग नाम रूप जाति गुंग और क्रिया में ही उलझ जाते हैं। उसके भीतर सत्ता देने वाले उस परमात्मा तक हमारी दृष्टि होती ही नहीं है। तो ये वैराग्य का क्या है, स्वरूप नहीं, ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान का फल क्या है, आप ज्ञानी हो गए हो, क्या आपको सींग आ जाएगी क्या, अथवा काला रंग गोरा हो जाएगा, अथवा मोटा आदमी पतला हो जाएगा? ज्ञान का स्वरूप क्या है? अथवा वो व्यवहार खाना पीना बंद कर देगा, अथवा वो सर नीचे पांव ऊपर करके चलना शुरू कर देगा? कहते पुनर्ग्रंथे अनुदयो, फिर से ग्रंथि उसको भूल करके भी पैदा नहीं होगी। मैं ब्राह्मण हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसी गांठ, ऐसी मिथ्या प्रवृत्ति भूल करके भी पैदा नहीं होगी। वह हमेशा हर अवस्था में, हर व्यवहार में अपने स्वरूप को जानता रहेगा। मैं क्या हूं, सच्चिदानंद परम ब्रह्म ही हूं, इसको पक्का ज्ञान हमेशा बना रहेगा। ध्यान देना तीन चीज, जैसे एक अभिनेता, कौन, एक अभिनेता किसी फिल्म में कोई भी रोल करे, पुरुष है स्त्री का रोल कर ले, बहुत बड़ा अरबपति है, गरीब का रोल भिखारी का रोल कर ले, लेकिन क्या वह भूल करके भी अपने स्वरूप को भूलेगा क्या? मैं अरबपति नहीं हूं, अथवा मैं पुरुष नहीं हूं, कभी वह भूलेगा क्या? या भूल करके भी अपने आप को गरीब मानेगा क्या? या भूल करके भी वह अपने आप को स्त्री मानेगा क्या? उसी प्रकार से जो ब्रह्मज्ञानी है, भूल करके भी कभी भी अपने आप को शरीर में अध्यास नहीं करेगा। उसकी मैं बुद्धि हमेशा अपने स्वरूप में ही बनी रहेगी। तीन चीजें ध्यान देना, वैराग्य चाहिए तभी ज्ञान टिकेगा। वैराग्य माने हुआ, वैराग्य का स्वरूप, वैराग्य का साधन क्या है, विषयों में दोष दर्शन देखना। वैराग्य का स्वरूप क्या है, जिहासा। जिहासा ने जो विषय मिले तो उस विषय में रस नहीं लेना, उस विषय को त्यागने की इच्छा होवे। वैराग्य का फल क्या है, दीनता का अभाव हो जाना, फिर यूं प्लीज प्लीज नहीं होगा। कितनी चीज हो गई, तीन। इसके बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसके बाद क्या मिलेगा, ज्ञान होगा। तो ज्ञान का साधन क्या है, श्रवण मनन इध्यासन। श्रवण तो हम सुनाए, मनन माने युक्ति से, जो हम सुने हैं युक्ति से उसको मजबूत करना है। इसलिए कई युक्तियां मैंने इस ग्रंथ में पढ़ा दी हैं, आपको बता दिए हैं। अंधकार आदि में एक दीपक रख दो, उससे जो प्रकाश निकल रहा है वह प्रकाश कहां से आ रहा है, क्या छेद से आ रहा है, अथवा तेल से आ रहा है, अथवा दीपक से आ रहा है, वह प्रकाश मतलब वो वस्तु प्रकाशित हो रही किससे हो रही है। ऐसे जो भी हम देखते हैं वह चैतन्य के प्रकाश से ही देखते हैं। आंख तो छेद है, मन उसका तेल हो गया, प्राण बत्ती हो गई, इनसे वस्तु नहीं दिखाई दे रही, किससे दिखाई दे रही है, प्रकाश से दिखाई दे रही है। ये सब युक्तियां मैंने कई बताई। तो मनन है युक्ति से, जो श्रवण किए हो, श्रवण किए गए विषय का युक्ति पूर्वक निश्चय करना, इसका नाम क्या है, मनन है। निध्यासन क्या है, युक्ति पूर्वक जिस विषय का निश्चय किया है उसी में ही चित्त को लगा लेना, इसका नाम क्या है, निधिध्यासन है। फिर अब जो ज्ञान हुआ है उस ज्ञान को क्या करना है, सुरक्षित करना है कि ज्ञान के बाद संसार में घूम जाना है? फिर ज्ञान हुआ भूल जाएगा? एक हम लोगों का आश्रम में एक महात्मा थे, जानते होंगे, शिवबोधपुरी जी कभी थे, तो ऐसे मजाक बस बोले, किसी ने कहा महाराज अब ज्ञान हो गया, अब बताओ क्या करूं? अब ज्ञान तो हो गया, जितना सुनना था सुन लिया, अब बताओ क्या करूं? तो महाराज ने कहा करना क्या बचा, शादी कर ले और क्या करेगा। अरे भाई ज्ञान हो गया फिर करना कुछ शेष रहेगा क्या? ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः न चास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत स न तत्वित। ज्ञान रूपी अमृत से जो व्यक्ति तृप्त हो गया है, ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः, अब जो कुछ करना है कर लिया, कुछ करना शेष, जो कुछ प्राप्त करना है सब कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ पाना नहीं है, जो कुछ देखना है जो कुछ देख लिया, जो कुछ भोगना है सब कुछ भोग लिया, अब कुछ इच्छा रही नहीं गई है। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः न चास्ति किंचित कर्तव्यम, अभी उसके मन में कुछ भी करना शेष नहीं है। अभी तुम्हारे मन में अभी ये भी सुनना शेष है, ये भी शेष है ना, सुनना चाहिए, सुनना मौज के लिए हो। देना दो चीज है, मैं बताऊं, एक होता है हमारा कर्तव्य है और दूसरा है वह काम करता हूं मैं अपनी मौज से करता हूं। तो कर्तव्य में बंधन है और मौज में कोई बंधन नहीं। जैसे छोटी सी बात है, हमने विवाह किया तो पत्नी का पालन पोषण करना आपका क्या है? कर्तव्य है। जो बेटा पैदा हुआ उसको पढ़ाना लिखाना आपका क्या है? कर्तव्य है। हमने इस बंधन में बंधे ही नहीं, तो अब हमारे पास जो मान धन आया, हमने किसी बच्चे को फीस जमा कर दिया, ये मेरी अपनी क्या है? मौज है। न करूं तो भी आप ये नहीं कर सकते महाराज आपका कर्तव्य आपने किया क्यों नहीं, ठीक है? तो ऐसे समय करना भी आपकी अब क्या हो जाए? मौज हो जाए, कर्तव्य न रह जाए, क्या हो जाए? मौज हो जाए। एक महात्मा थे, पढ़ते थे, किसी ने कहा महाराज जी आपने तो बहुत कुछ पढ़ लिया, आपको पढ़ने की आवश्यकता क्या है? तो महाराज जी कहते हैं कि भाई मैं देख रहा हूं मेरे बारे में जो इसमें लिखा है ठीक ही लिखा है नहीं लिखा है, मेरे बारे में जो इस ग्रंथ में लिखा है वह ठीक है अथवा नहीं ठीक है, ये मैं इसको चेक कर रहा हूं। एक कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य तब होता है कि एक दिन आप चार अध्याय पढ़े और चार अध्याय का संकल्प लिए हो, एक दिन तीन अध्याय पढ़े तो आपका मन क्या हो गया? अशांत हो गया, वो आपका क्या बन गया है? कर्तव्य। अब हमारा तो मौज है, चार अध्याय पढ़ लिया नहीं आठ अध्याय पढ़ लिया, और जिस दिन नहीं आया एक भी अध्याय नहीं पढ़ा, लेकिन मन में कोई विक्षिप्तता न होवे, उसका नाम क्या है? मौज होना। तो न चास्ति किंचित कर्तव्य अस्ति चेत, यदि अभी भी यह भाव उठ रहा है तो स न तत्व वित। ये उत्तर गीता में भगवान ने दो टूक कर दिया, कह दिया अस्ति चेत स न तत्वित, यदि है तभी तत्वज्ञानी हुआ ही नहीं है। चलो हम तो अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं कि आपको ज्ञान हो गया होगा, इतना सोचते हैं क्योंकि इतने दिन से कथा सुनते सुनते ज्ञान हो गया, लेकिन बस ज्ञान हो गया लेकिन ढक्कन नहीं रख पा रहे हैं। ज्ञान हो जाए उस पर क्या रखना है? कवर रखना है। तो कवर माने हुआ भक्ति का ढक्कन रख दो, भक्ति माने चिंतन, भक्ति माने क्या हुआ? अब चिंतन जिस स्वरूप को जान गए उसी स्वरूप में चिंतन रखो। अब संसार का चिंतन करोगे धीरे धीरे वह चिंतन गौड़ हो जाएगा और संसार फिर से हावी हो जाएगा, फिर से हमारे ऊपर सवार हो जाएगा। हाँ तो और क्या, जो प्रभावी होगा पहले को दबा लेगा। ध्यान ना, दो हम कहते हैं, एक वृक्ष है, वृक्ष पैदा हो गया, अंकुर लग गया, ठीक है कोई बात नहीं, इतना बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी अगल बगल की घास को क्या करनी पड़ेगी? उखाड़नी पड़ेगी। यदि उखाड़ोगे नहीं ना और उस वृक्ष की केयर नहीं करोगे ना, तो अगल बगल की घास इतनी हावी हो जाएगी कि उस वृक्ष को पेड़ होने से, मतलब उस छोटे से पौधे को पेड़ होने देगी नहीं। हम तो कहते हैं पेड़ इतना मजबूत कर लो, ज्ञान का पेड़, तो अगल बगल की जो घास है ना अपने आप सूख ही जाए। तो आपके भीतर अपना निश्चय इतना मजबूत हो जाए कि कोई लाख कहे तुम शरीर हो, तुम स्त्री हो, तुम माँ हो, तुम पत्नी हो, तुम बेटा हो, लेकिन लोगों के लाख कहने पर भी मेरे मन में भूल करके भी यह अध्यास आवे ही न। तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम गोरे हो, तुम काले हो, ऐसा लाख लोग कहे, लेकिन ऐसा अध्यास हमारे मन में भूल करके भी आवे न। इसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान। तो ध्यान का भी दो तरीका बताया, पहले एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म भक्ति। स्थूल भक्ति, दूसरी कौन सी भक्ति है? सूक्ष्म भक्ति। ये सब चिंतन आप लोगों ने किया, फिर ध्यान करना है। फिर क्या करना है? ध्यान करना है। अब ध्यान में तो बताया पहले स्थूल भक्ति, भगवान का ध्यान कर लो, लेकिन कहा कि ध्यान किया जाता है कि ध्यान होता है, आप बताओ। लेकिन लोग आजकल ध्यान कराना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, आपने कभी ध्यान किया है क्या कि मैं आदमी नहीं हूं? नहीं, मैं गधा नहीं हूं, मैं घोड़ा नहीं हूं, मैं बकरी नहीं हूं, क्योंकि बकरी जैसे मैं नहीं बोलता हूं, कान नहीं है मेरे पास, सींग नहीं है, इसलिए मैं नहीं। कभी ध्यान किया क्या आप लोगों ने? क्यों नहीं ध्यान करते? तो ये भी ध्यान करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, इसकी भी ध्यान करने की कोई आवश्यकता पड़ गई क्या? एक बार बुद्धि में निश्चय हो गया कि मैं यह तत्व ही हूं, तो आपको ध्यान की भी आवश्यकता रह ही नहीं जाएगा। या कभी ये भी ध्यान किया है क्या? मैं मनुष्य हूं, क्योंकि मनुष्य जैसी नाक है, मनुष्य जैसी आंख है, कभी ध्यान किया है क्या? या शकल लेकर के मनुष्य से अपनी मिलाते हो, तत्वमसी वाला नहीं, दसम ओ खरगोश वाला, देख तेरी शकल इस शकल से मिलती है, इसलिए तू भी क्या है? शेर है, तो मेरी शकल मनुष्य से मिलती, इसलिए मैं क्या हूं? मनुष्य हूं। कभी मिलाते हो क्या? पक्का निश्चय हो गया मैं क्या हूं? मनुष्य ही हूं, इसलिए मनुष्य हूं को ध्यान करने की आवश्यकता। धन का, पत्नी का, पुत्र का ध्यान करते हो क्या? आज आधा घंटा बैठ लो, बेटे का ध्यान करते हैं, बेचारा सो रहा होगा, बेचारा पक रहा होगा, बेचारा एक कर रहा होगा, कभी ध्यान करते हो क्या? तो भगवान का ध्यान करने की आवश्यकता क्या पड़ गई आपको? तो इसको यहां बता रहे हैं कि जिस वस्तु की महत्व बुद्धि आपके भीतर बैठ जाएगी, आपको उसका ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, 24 घंटे उसी का ही ध्यान बनता रहेगा। तो ध्यान न करो, ध्यान क्या करना है? ध्यान जो भी किया जाता है उसकी महत्वा को अपनी बुद्धि में बैठाना है, और संसार की महत्वा को बुद्धि से बाहर निकालना है, तो देखना ध्यान अपने आप बंद हो जाएगा। ये सब थोड़ा बता दिए थे, फिर भी कहते हैं देखो, सुंदर से सुंदर वस्तु, कंदर्प कोटि सुभगम, करोड़ों कामदेवों से भी जो सुंदर है वह कौन है बताओ? आप कहते हो आपका शरीर बड़ा सुंदर है, क्या नाक, क्या आंख, नीली नीली आंख, तोते की टोंच जैसी नाक, अनाज के दाने जैसे दांत, बिंब फल जैसे होठ, पता नहीं कौन सा बिंब फल है, हमें नहीं मालूम है, कहते बिंब फल जैसे होठ या जो भी है। अब बताओ ये सब सुंदर किसकी सुंदरता से लगते हैं मेरे को? अच्छा, बिंब जैसे कलर, हमें नहीं मालूम, लाल होता है, अच्छा ऐसा है। तो चलो, तो अब ये सब सुंदर हैं, अथवा इनकी सुंदरता को पैदा करने वाला कोई दूसरा है, मुझे बता दो भाई। जिस शरीर को हम छूने के लिए तरसते हैं, यदि उसी शरीर में वह चैतन्य सत्ता न देवे, विशेष सत्ता न देवे, इसी शरीर को छूने के बाद क्या करने जाते हो? तो सबसे सुंदर कौन है वस्तु? ये शरीर है या वो आत्मा सुंदर है? आप कल्पना कर, हम बहुत बढ़िया लगता है एक चीज, हाथ में अनाज लेते हो, अनाज जब तक आपके संपर्क में नहीं है, हाथ में है, कितनी खुशबू आती है उस अनाज में, वही अनाज 6 घंटे आपके पास रह जाता है, और जब बाहर निकलता है तो बाप रे, मतलब इतनी खुशबू चीज भी इस शरीर के साथ रह करके इतनी बिगड़ जाती है, मतलब शरीर कितना मलिन है। लेकिन उस मलिन शरीर को भी जो छूने के योग्य, जो देखने के योग्य बनाया हुआ है, वह परमात्मा कितना सुंदर होगा, आप कल्पना करो। जैसे हम लोग कहते हैं ना, गंगा का जल एक बूंद डाल दो एक बाल्टी में, तो कहते एक बाल्टी को भी पवित्र बना देता है नहीं? तो उसी प्रकार से करोड़ों कामदेव से भी सुंदर है, जो अपवित्र से अपवित्र, मलिन से मलिन देह को भी दर्शनीय, स्पर्श क्या है, स्पर्शनीय, छूने के योग्य, देखने के योग्य बनाया हुआ है। किसने बनाया है? उस परमात्मा ने। इतना ही नहीं, वांछित फलदम, फलदम जो चाहो उससे उस फल की प्राप्ति कर लेते हो। दया रणव, दया का वह सागर है। कैसे दया का सागर है? संसार वाले कुछ देते हैं ना तो सहेतुकी देते हैं, कुछ न कुछ अपेक्षा से देते हैं, लेकिन वो परमात्मा ने देता ही देता है, लेकिन कभी एहसान नहीं जताता है। मैंने यह किया, यह किया। कई लोग कहते हैं क्या दिया? हम कहते हैं तो दो सुंदर आंखें दिया, शरीर, मनुष्य शरीर दिया, इतना हवा दे रहा, इतना पानी दे रहा, इतना धूप दे रहा, क्या नहीं दे रहा मेरे बता दो। खाने के लिए कितने फल दिए, रस दिए, खट्टा मीठा कड़वा सब चीजें तो उसने ही दिया कि हम दिए बताओ। ये सुंदर पत्नी दिया, सुंदर पुत्र दिया, सब किसके लिए दिया है? आपके लिए तो दिया है, लेकिन ऐसे उस उदार परमात्मा को भी छोड़ करके या हमारे नेत्र युगल संसार के किन विषयों को देखने के लिए तत्पर हो रहे हैं, वह साधक अपने आप को समझा रहा है। अरे देखने वाली चीज यदि कोई है तो कौन है? वह परमात्मा है, उसको देखो ना। तुम किस विषय को देख रहे हो? अरे इतने ही नहीं, पुण्य तमाम अति सुरसाम मनोभिरामा, मन को प्रिय लगने वाली पुण्य से पुण्य, भगवान की कथा को छोड़ करके यह कान ग्राम में कथा को सुनने के लिए बड़ा उत्साहित रहते हैं, बड़ा आदर करते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी मन नहीं लगता, बड़ा बोर होता। हम कहते हैं भाई पढ़ना ही है तो तू उपन्यास पढ़ना बंद कर दो। उपन्यास से भी सुंदर सुंदर कहानियां आपको पुराणों में मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगी? ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करने वाली हमें तो छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। देवी पुराण का मैंने एक कौन सी कथा, सत्य हरिश्चंद्र वाली देवी पुराण में, सहदा मेरे अपनी आंखों से आंसू गिर गए थे कि मैं रोता होता नहीं हूं, कभी नहीं रोता मैं, लेकिन ऐसी कथा पढ़ी कि मैं बोल रहा हूं रोता जा रहा हूं, बोल रहा हूं रोता जा रहा हूं अकेले में। तो कुछ ग्रंथों में इतनी कथाओं का भी इतना सार है, कथा ही नहीं है, उस कथाओं के भीतर भी कुछ न कुछ क्या है, शिक्षाएं हैं। उनसे पढ़ो तो आपका मन शांत हो जाता है। अरे सामान्य उपन्यास पढ़ो तो आपका मन शांत नहीं बल्कि क्या हो जाता है, अशांत और संसार की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। आप देख लेना, आपके अंदर क्रूरता आ जाती है, आपके अंदर हिंसा की वृत्ति आ जाती है, आपके मन में संतोष की वृत्ति अपने आप समाप्त तो हो जाती है। क्योंकि हम दोनों को पढ़े हैं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, मैं भी बचपन में पढ़ता था। ओ सुरेंद्र मोहन पाठक का जासूसी उपन्यास आपने पढ़ा होगा, कभी याद होगा, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है? सुरेंद्र मोहन पाठक का जासूसी नावेल, वर्दी वाला गुंडा या कौन कौन ऐसे उपन्यास पढ़ा करते थे, रात भर में उपन्यास पढ़ डालूं नींद भी ना आवे। लेकिन मिलता क्या था, या तो किसी की जासूसी करने की वृत्ति, अथवा हिंसा की वृत्ति, अथवा काम वासना की वृत्ति। और जब से उपन्यास क्या पौराणिक कहानी, जब मन न लगे तो क्या पढ़ लो, किसी पुराण को उठा के पढ़ना शुरू कर दो, सर बताओ इतना मन भी लगेगा, अब मन आपका शांत भी हो जाएगा। जो वासनाएं होंगी वह वासनाएं भी स्वाभाविक शिथिल हो जाएंगी। लेकिन ऐसी उस ईश्वर की लीलामयी कथाओं को छोड़ करके, रे मेरे कान कहां तुम ग्राम में कथा आदरम वहती, ये सांसारिक कथाओं को सुनने के लिए, सांसारिक प्रपंचों को सुनने के लिए तुम कहां से उनको सम्मान दे रहा है। और जिसको सम्मान देते हैं ना वो कभी भूलता भी नहीं, ध्यान देना। यहां तो कम है, उधर देखना इलाहाबाद बनारस में अखबार कितनी तड़प होती है, देखा नहीं? देखा है, सुबह अखबार आया नहीं तो कहते हैं कोरा अखबार मैं पढ़ूंगा, मतलब बिना खुले हुए, और वो जमीन बैठ जाते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं कि जिसे एक एक चीज की चाट जाएंगे, और 10 साल बाद, 5 साल के बाद कौन सा न्यूज कब आया था उनको याद रहता है। लेकिन हम पुराण में पढ़ते हैं हमें वो समाचार याद ही नहीं रहता, क्यों? कि हमारा उस वस्तु में ध्यान है ही नहीं। जिस दिन ध्यान हो जाएगा आप भूलोगे ही नहीं, सच बता रहा। हमने इनसे कहा था एक बार, मैंने भी महाभारत पढ़ी थी,
दस पंद्रह दिन में पूरी महाभारत पढ़ डाली, दिन रात दो दो तीन तीन बजे रात तक में। और वो भी कहानी आज भी जो दिल में छुई थी कहानी, आज भी मैं वो दृष्टांत देता हूं, दोबारा मेरे को पढ़ने का मौका नहीं मिला, अब मन भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी कहानी आज भी मेरे को मन में याद आती है। चलो ऐसा क्यों हो रहा है, तो अपने आप को डांटता है, दौर्भाग्यम इंद्रियाणाम, यह इंद्रियों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कृष्ण रूपी विषय के रहते रहते जो विषय शाश्वत है, शाश्वत माने कृष्ण चर्चा सुनो तो जितनी बार सुनो उतनी बार ही नित्य नया रस निकलता है। संसार की नावेल, संसार की पत्रिका एक बार पढ़ लो तो आधे घंटे में वो अखबार बेकार, कूड़ेदान, वो मल उठाने के काम आता है, कूड़ा फेंकने के काम आता है, लेकिन इन ग्रंथों को जितनी बार पढ़ो उतनी बार क्या आता है, नित्य नया ही आता है। लेकिन फिर भी क्षणिक पाप करने वाले दूसरे विषयों में यह मन रमण कर रहा है, यह इंद्रियां रमण कर रही है, यह हमारी इंद्रियों का ही दुर्भाग्य है। कई लोग कहते महाराज हमारे यहाँ इतने भगवान हैं, हमका हमारे यहाँ सब्स्टिट्यूट बहुत हैं, इसमें मन न लगे तो उसमें जाओ, उसमें मन लगे तो उसमें जाओ, लेकिन किसी मन लगे तुम पहुंचोगे वहीं, दूसरों के यहां तो कोई रास्ता है ही नहीं, एक ही रास्ता है, एक ही सब्जी बनती है, खाओ अथवा मरो, है नहीं, अपने यहां तो तमाम च्वाइस है, अपने यहां तमाम चुनाव है, तुम्हारा जिस भगवान में जिस शास्त्र में जिस तरह से मन लगे उस शास्त्र का श्रवण करो, देखो पहुंचोगे वहीं, तृप्ति वही मिलेगी, नहीं भाई दाल खाओ चाहे जो भी दाल खाओ तृप्ति वही मिलेगी, नहीं मिलेगी बता, तो हमारे यहां तो चुनाव है, ये हमारी संकीर्णता नहीं है, हमारी व्यापकता है कि छोटे छोटे बच्चे को लेकर के तमाम तरह के विचारों को लेकर के शास्त्र पहुंचा देता आपको वही उस आत्म तत्व की तरफ ही पहुंचा देता है। इसलिए यह हमारे इंद्रियों का बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे हम तो सही बताऊं कहते हैं एक भारत में जन्म लेना, आप मानो न मानो भारत में जन्म लेना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप क्या समझते हो, बहुत बड़ा सौभाग्य है। अमेरिका वालों से पूछो जो रहते हैं, भले हम लोग यहां से दूर रह करके सोचते हैं, एक हमारे पास भी फोन आता है, महाराज जी बर्फ इतनी गिर गई है रोज बेलचा लेकर के कमरे से बाहर तीन बार रात में उठ उठ के बाहर निकालना पड़ता, बताओ इतना बर्फ, अपने आज सर्दी न बहुत सर्दी है न बहुत गर्मी है, और खाने की भी इतनी सामग्रियां हैं कि जो चीज भारत में नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगी, आप सोच लेना कितने सब्स्टिट्यूट हैं बताओ। भारत में जन्म लेना, संतों का सानिध्य मिलना, इतने शास्त्र मिलने, किस धर्म में किस जाति में किस संप्रदाय में आप बताओ, इतनी व्यापकता। दूसरे संप्रदाय वाले तो एक अंश को ले लिए, ईसाई ने सेवा ले लिया, आर्य समाजियों ने है तो हिंदू है लेकिन यज्ञ ले लिया, मुसलमानों ने उपासना ले लिया, केवल चार वक्त नमाज पढ़ लो बस और कुछ नहीं करना है, चिंतन मनन नहीं, क्या करना है केवल चार वक्त नमाज पढ़ लेना, बस उपासना ले लिया, लेकिन हम तो सबको लेके चले, उसके एक एक अंग है सब, ये अपना सनातन परंपरा क्या है, सर्वांग है, इसमें सारे अंग समाहित हैं, सेवा भी है। जैन में त्याग ले लिया, जैन ने किसको ले लिया, उपवास और त्याग को ले लिया, लेकिन है किसका अंग बताओ, एक ही तो है अंग, हाँ? मतलब वेदांत अपने सनातन परंपरा का एक अंग ही तो है, हमारा सनातन क्या है, एक सर्वांग है, पूरे अंग है, कि सनातन परंपरा में जन्म लेना भी एक बहुत बड़ा क्या है, सौभाग्य है। लेकिन ऐसे सौभाग्यशाली क्षणों में जन्म लेकर के भी हम वही संसार के विषयों में ही भटकते रहे, इससे बड़ा दुरुपयोग इस काल का इस वक्त काल कुछ हो ही नहीं सकता। अब एक बहुत बड़ा प्रसंग आप सबके सामने आता है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्या करें, कल परसों से हमारे 10-12 लोग तो गायब हो रहे हैं हरिद्वार जाने के लिए या कहीं और जाने के लिए, लेकिन अब क्या करें भाई, लेकिन ये विषय बहुत गंभीर है, अब सुनना जितना भी मिल जाए। कहता सगुण निर्गुण की एकता है, क्या है महाराज जी, सगुण है निर्गुण है दोनों की एकता का हम कैसे, एक मोटा दिखता है पतला दिखता है एक ही सत्ता है कैसे हम माने, तो इसको 194 श्लोक है, श्रुतिर्भिर महापुराणैः सगुण गुणातीतयोरेक्यम्
यत् प्रोक्तम गूढ़तया तदहम वक्षे अति विशदार्थम।
श्रुति भी माने वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, इतने नहीं महापुराणई है, बड़े बड़े पुराणों के द्वारा क्या बताया गया है, सगुण गुणातीतयोः एक्यम। जो सगुण है ना वही निर्गुण है, सगुण और निर्गुण दोनों की एकता को यत् प्रोक्तम जो कहा है, कैसे कहा है, गूढ़तया स्पष्ट नहीं कहा, कैसे कहा, छिपा के कहा है। तद हम, जिसको छिपा के कहा है ना उसी को आज हम आपके सामने खोल के रख रहे हैं। बस शास्त्रों में सगुण को ही क्या बताया गया है, गुणातीत माने निर्गुण बताया गया है, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, कैसे बताया गया है, परोक्ष रूप से बताया गया है। तो जिसको वहां परोक्ष रूप से बताया गया है उसी को हम आज आपके सामने क्या करता हूं, वक्षे कहूंगा, अति विस्तारथम उसी को स्पष्ट करके व्याख्या के रूप में आपके सामने मैं प्रकट कर रहा हूं। ये आपके अपने अनुभव में भी आता है, आप अजमा के देख लेना। जैसे दो घटनाएं हैं आपके सामने, स्वप्न में देखते हो कितना मोटा आदमी है, मरेगा तो कितनी लकड़ी लगेगी, इसको तो 8 आदमी भी उठा नहीं पाएंगे। और जैसे जगे तो स्वप्न का जो पुरुष दिखा था मोटा सा स्थूल सा, वह सूक्ष्म निकला के स्थूल है, बताओ, है तो सूक्ष्म ही लेकिन क्या लगा था, स्थूल सा दिखा था। ऐसे सारा संसार स्थूल सा दिख रहा है लेकिन है जगत पूरा का पूरा क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, गुण वाला दिखता हुआ भी यह जगत क्या है, गुणातीत ही है। एक ही उदाहरण है स्वप्न का। दूसरा उदाहरण हम आपके सामने कई बार देते हैं, आपके पिता पत्नी बेटा स्थूल है अथवा सूक्ष्म है, लेकिन आप मानते किसको, कैसे देखो अजमाना। कोई आपकी दादी अथवा मम्मी बहुत बीमार थी, आपने कहा महाराज जी कम से कम मृत्यु के समय आप आकर के मम्मी को दर्शन दे दो, कहते नहीं कहते, तो हमने कहा ठीक है आऊंगा, गया तो लेकिन ऐसा जाम में फंसा कि 5 मिनट लेट हो गया, और तब तक मम्मी चली गई थी। जब मम्मी चली गई थी हमने कहा बताओ कहां मम्मी, भाई मिल लेता हूं, कहा स्वामी जी आप लेट करके क्या हुआ, मम्मी तो चली गई, मम्मी का शरीर पड़ा है, ध्यान देना मम्मी का शरीर पड़ा है, फिर भी आप क्या बोल रहे हो, मम्मी चली गई। अच्छा मम्मी चली गई इस वाले दरवाजे से गई थी या इस वाले से गई थी, जाते वक्त सीसीटी कैमरे लगे नहीं लगे आपके हॉल में, भाई यहां लगे हैं सीसीटी कैमरे, तो आप उसमें क्लिप देखना कि मम्मी उस वाले दरवाजे से गई है इस वाले दरवाजे से गई है, कोई तस्वीर आई है क्या मम्मी की, तो बताओ मम्मी साकार थी निराकार थी मेरे को बता दो। लेकिन आप मम्मी किसको मानते थे, यदि शरीर को मम्मी मानते थे तो मम्मी को जला के आते हो, किसको जला के आते हो, मम्मी को जलाते हो, मम्मी के शरीर को जलाते हो, यदि मम्मी को जलाते होगे तो मम्मी को जलाने का पाप लगना चाहिए, लगना चाहिए, अरे मां को जला के आ रहे हो बताओ, कम से कम कुछ तो शर्म करो भाई, लेकिन मां को नहीं जलाए हो, किसको जलाए हो, शरीर को जलाए हो, मां तो शरीर नहीं थी, तो जो मां है पत्नी है पुत्र है वह साकार है निराकार है, तो जो निराकार है वो निर्गुण है कि सगुण है, तो अब बताओ आए सारा संसार क्या है, निर्गुण है कि सगुण है, लेकिन हम इसको क्या मान बैठे हैं, सगुण मान बैठे हैं, दृष्टि हमारी नहीं जाती है उसमें, वस्त्र के रूप में इतने खो जाते हैं कि सूत हमें दिखाई नहीं देता है, जबकि पूरे वस्त्र का अधिष्ठान देखा जाए तो कौन है, सूत है, तो पूरे इस विश्व का अधिष्ठान देखा जाए तो कौन है, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है। कमरा जी कैसे दिखाया है, शो किया है, कैसे छिपाया है, तो दो उदाहरण आपके सामने हम पेश करते हैं, उससे आपको शायद क्लियर हो जाएगा। एक तो अभी मैं भागवत कथा करके आया इसलिए भागवत का उदाहरण ले लेता हूं, वेदांत पर एक भागवत थी, मुश्किल से 8-10 लोग थे लेकिन फिर भी पूरा वेदांत का काफी श्लोकों का उच्चारण हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म होता है,
कृष्ण साकार है निराकार है? दोनों है। चलो देखना कृष्ण कौन सी संतान है, सातवीं है आठवीं है? उधर चक्रव्यूह बना, अभिमन्यु घुसा तो किसमें फंस गया? छह पार कर गया, सातवीं में उलझ गया। यदि सातवीं को भी तोड़ देता तो बाहर निकल जाता, नहीं निकल जाता? तो इन सात आठ का कोई न कोई गूढ़ प्रसंग होगा कि नहीं होगा, मेरे बता दो। हमें लगता है कोई न कोई गूढ़ प्रसंग है, नहीं तो ऐसा क्यों बोलते? वहां भी सात के चक्कर में हुआ, यहां भी सात बच्चों को मारना पड़ा है, नहीं? तो पहले मनु वाला देख ले, देखो क्योंकि मनु बच्चा है अभी, इसलिए बच्चे वाले ही कर ले। संसार ये बड़ा चक्रव्यूह है, संसार ही बहुत बड़ा क्या है, एक चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह में हम कहीं न कहीं उलझे हुए हैं। पहला है समाज से उलझन, समाज आसक्ति, क्या है? सोशल अटैचमेंट, ठीक है। दूसरी आसक्ति धन आसक्ति, दूसरी आसक्ति कौन सी है? धन आसक्ति। तीसरी आसक्ति परिवार की आसक्ति, धन भी क्यों कमाता हूं? परिवार के लिए। समाज से हटे थोड़ा, समाज में तो पूरा आ गया समाज, इसके बाद क्या आया? धन आया। धन के बाद क्या आया? परिवार। परिवार के बाद कौन आया? पत्नी, नहीं पुत्र। परिवार के बाद कौन आया? पुत्र। पुत्र के बाद कौन आया? पत्नी। पुत्र के बाद कौन आई? पत्नी। पत्नी के बाद कौन आया? शरीर। पत्नी के बाद कौन आया? हाँ, या समाज को हटा दो तो क्या हो जाएगा? धन, परिवार, पुत्र, पत्नी, शरीर, पांच ही हो गए ना। तो समाज को ले लिया तो छह हो गए, ठीक है ना। ये छह आसक्ति को हटा दो, क्या करना है? छह आसक्तियों, एक सम्मान, क्या होगा? सम्मान, इनको हटा दो। तो अंत में जो शरीर आसक्ति होगी वो भी हटा दिया, तो ये सातों आसक्ति जैसे हटेगी आपको अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। और स्वरूप की उपलब्धि होना ही मान लेगा संसार के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाना, क्या है? हम देखो संसार में सब लोग कहीं न कहीं इन्हीं में ही फंसे पड़े हैं, चाहे कोई समाज की चिंता, चाहे कोई धन की चिंता, अथवा परिवार की चिंता, अथवा पुत्र की चिंता, अथवा पत्नी की चिंता, अथवा सम्मान की चिंता, अथवा देह की चिंता। इस देह भाव से मुक्त होते ही आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भाई जब तक ये सातों दरवाजे नहीं टूटेंगे तब तक आप संसार से मुक्त होने वाले हो नहीं। इसलिए देह और सारे दरवाजे तोड़ दिया लेकिन अंत में देह में मैं पना छोड़ना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। देह में मैं पना करके फंस गया बेचारा, देह में, क्योंकि देह में मैं पना ही तो सबसे बड़ा दरवाजा है। देह में मैं है तभी तो लगता है कि सम्मान भी मिले, क्या मिले? फूल माला चढ़े, धन चाहिए, पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, समाज चाहिए, सब जगह चाहिए, नहीं चाहिए। सारी आसक्ति हटी और शरीर से भी मैं हटा तो सारा बंधन छूटा और अपने स्वरूप में आप स्थित हो जाओगे। ये है किसका? चक्रव्यूह का गूढ़तया। अरे आप चक्रव्यूह द्रोणाचार्य का बनाते रहो और तोड़ते रहो और सारी जिंदगी तोड़ते रहोगे, सब कहेंगे मैं तोड़ दूंगा, चाचा ताऊ बेटा बेटी सब कहेंगे मैं तोड़ दूंगा, तू घुस तो। लेकिन मैं कहता हूं तोड़ना आता है तभी संसार में घुसना भी, और तोड़ना न आवे तो संसार में घुसना, हम कहते हैं दुकान फैलाओ लेकिन समेटना आता हो तभी फैलाना। और नहीं, अरे भाई आप लोग कभी मोटर का इंजन खोला ही नहीं खोला है, कभी कोई खराब हो जाए लेकिन खोल के फिर से व्यवस्थित बैठाना आता हो तब तो खोलना, नहीं सीधे मिस्त्री के पास चले जाना, नहीं तो खोल दोगे कौन सा नट कहाँ लगेगा ये भी भूल जाओगे, फिर तो जो चलने लायक रहेगी वो चलने लायक भी समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म भी देखो, भगवान कृष्ण किसके गर्भ से पैदा होते हैं? देवकी और वसुदेव। वसुदेव एक जीव है, वसुदेव कौन है? जीव का विवाह अभी और हुआ है लेकिन कंस को कोई खतरा नहीं, कंस है अहंकार। कंस कौन है? रथ कौन है? शरीर। इस शरीर पे रथ को चलाने वाला कौन है आप बोलो भाई? क्यों भाई, सारा व्यवहार किससे चल रहा है? और अहंकार से चल रहा है। तो इस जीव का विवाह अन्य विषयों के साथ हुआ है, लेकिन कंस को कोई खतरा नहीं है। कंस तो दिन दुगना रात चौगुना फूलता है, फलता है। लेकिन जब इसी जीव का विवाह देवकी के साथ होता है, देवकी माने दिव्य बुद्धि के साथ होता है, तो कंस घबरा जाता, अब तुमने गया। सही बताओ, आपके अंदर विवेक आ जाएगा तो कभी अभिमान करोगे क्या? मेरे बता दो, अभी तो अभिमान करते हैं। महाराज जी आपने कितना ज्योतिर्लिंग देखा? हम कहा भाई तो भैया तीन देखे हैं। अगर आपने तीन ही देखा महात्मा होकर के, हम तो 12 का 12 देख लिया। अभी यदि ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, तो एक देखा अब 12 देखा, सारे ज्योतिर्लिंग क्या है? सही बताना, एक जैसे एक अलग है, बताओ। अब विचार करना, ज्ञान हो गया तो आपको देखना न देखना तो ज्योतिर्लिंग अपने भीतर ही देख लोगे। जिसकी सत्ता से सारा शरीर इंद्रियां इनके रूप में ज्योतिर्लिंग ही प्रकट हो रहा है। सांप के रूप में कौन दिख रहा है? ज्योतिर्लिंग ही प्रकट हो रहा है। फिर घूमने की वृत्ति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। फिर अभिमान कर पाओगे क्या? मेरे को बता दो। तो कंस घबराता है, अब तो देवकी आई तो खलास में हुआ, मैं मरा। कौन सोचता है? कंस। ध्यान देना, तो अहंकार सोचता। इसलिए अहंकार को खतरा वसुदेव से नहीं है, अहंकार को खतरा किससे है? देवकी से। इसलिए वो देवकी को ही मारना चाहता है। वसुदेव के साथ मौज में जी रहा था, पहले भी जी रहा था। कौन? कंस। ठीक है ना? और इसे लौकी के दिमाग में, तो भाई यदि हमारी बहन है कौन? देवकी। तो यदि देवकी के संतान से 8वां पुत्र होगा तो मैं तो कहूंगा देवकी तू सारी मत कर, जीजे को मैं मार डालता हूं। और उसी को मारूंगा कि बहन को मारूंगा? बताओ, देवकी तो मेरा खून का रिश्ता है, वसुदेव तो क्या है? दूर का है। तो जीजा को नहीं मारूंगा कि बहन को मारूंगा? बताओ किसको मारूंगा? लेकिन वसुदेव के साथ खतरा है ही नहीं। खतरा किसके साथ है? देवकी के साथ। तो उस कंस ने उनको जेल में डाल दिया। जेल कौन है? ये संसार रूपी जेल में डाल दिया, और तमाम तरह की यातनाएं दिया जिसे वह देवकी को छोड़ देवे, बुद्धि को छोड़ देवे। लेकिन कंस को वसुदेव की विशेषता थी, तमाम कष्टों को सह करके भी उसने देवकी का त्याग नहीं किया, और एक एक पुत्र पैदा हुआ, उन पुत्रों को मारता गया। पहला पुत्र कौन है? यह शरीर ही आत्मा है। ठीक है, शरीर आत्मा कैसे हो सकता है? शरीर तो विनाशी है, क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। आत्मा तो क्या है? शुद्ध है, पवित्र है, अविनाशी है। एक बेटा मर गया, एक बेटा मरा। कौन सा बेटा? शरीर आत्मा मर गया। एक कंस से ही साधना हो रही, कंस ही मार रहा है, अहंकार ही साधना कर रहा है। दूसरा बेटा कौन पैदा हुआ? शरीर के बाद कौन आएगा भाई? अन्नमय कोष के बाद कौन आएगा? प्राणमय कोष। प्राण ही आत्मा है। प्राण आत्मा कैसे हो सकता है? वह तो हवा है, जड़ है। दूसरा बेटा मर गया, ये सारा विचार कर लेना आप। फिर प्राण के बाद कौन आया? आत्मा। मन आया, इंद्रियां आई, इंद्रियां आत्मा है, इंद्रियों को भी मार डालो, ये तो करण है, साधन है। फिर मन आया, कौन आया? मन आया। मन भी एक बेत की तरह है, आंख के साथ लग गई रूप देखेगा, कान के साथ लग गया तो शब्द सुनेगा, मन ही आत्मा है। फिर आगे हटे तो कौन आया? बुद्धि आत्मा है। बुद्धि भी जड़ है, मेरी बुद्धि कहता हूं इसलिए मैं बुद्धि हो नहीं सकता हूं। बुद्धि के बाद कौन आया? अहंकार, आनंदमय कोष, ये मैं हूं। फिर इन सब का कारण अज्ञान। इन सातों को मारो, सातों को समाप्त करो, तो 8वां कृष्ण रूपी आत्मा प्रकट हो जाएगा आपके भीतर। ज्ञान बाहर नहीं होगा, कहां भीतर होगा? ये सब मैं हूं नहीं, मैं तो अंतर्यामी रूप से मैं स्थित हूं, आत्मा ही हूं मैं, एक ज्ञान हो जाएगा। लेकिन उस ज्ञान को छिपा लेना गोकुल में, इंद्रियों के बीच में, और वहां से माया को स्वीकार कर लेना, मैं तो अज्ञानी हूं। और छिप करके अपने भीतर के सारे अवगुणों को समाप्त करना। बकासुर छल, अघासुर पाप, अविद्या पूतना, इन सब को मारना। और जब सारे अंदर के दोष निकल जाएं, तो उस ज्ञान को प्रकट कर देना, और मथुरा पे साम्राज्य उसका स्थापित कर देना। किसका?
कृष्ण का। तो ये सब गूढ़तया पुराणों में भी कृष्ण की उत्पत्ति बताई गई है, लेकिन किसी बाहर के देव की वसुदेव नहीं। कौन सी देव की वसुदेव? ये जीव रूपी वसुदेव और बुद्धि रूपी देवकी के साथ विवाह करेगा तो आत्मज्ञान रूपी कृष्ण पैदा होगा और उस कृष्ण से ही आपकी मुक्ति मिलेगी। और बाहर का कृष्ण पैदा हुआ होगा, अब क्या कर सकते हैं उससे, उससे उनकी मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन अपने भीतर जब तक कृष्ण नहीं पैदा होगा तब तक मुक्ति मिलने वाली है ही नहीं। आगे इसी का रहस्य और क्या है जिसको सुनना होगा कल आएगा, क्योंकि हम जानते हैं मुंबई वाले कल सोते हैं, तो जिसको जगना होगा तो आएगा, नहीं जिसको सोना है तो हम क्या कर सकते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।